ओम शांति मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हम चर्चा कर रहे थे अंतिम उड़ान की तैयारी। इसमें भी देह और देह की दुनिया का त्याग, बेहद का त्याग, देह में देह और देहभान का त्याग, देह अभिमान का त्याग और देह की दुनिया में, इसमें विस्तार रूप में देखा जाए तो अपनी कर्मेंद्रियाँ, ये देह की एक बहुत बड़ी दुनिया है। बाद में दुनिया में दो चीज़ें हैं, व्यक्ति और वस्तु। तो लौकिक और अलौकिक जो भी संबंधी हैं उनसे ममत्व का त्याग, वस्तुओं का भी त्याग। परंतु हम चर्चा कर रहे थे हमारे कर्मेंद्रियां हमें अधीन न बनाए, कर्मेंद्रियों की अधीनता का त्याग। इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वही कर्मेंद्रियजित बनेंगे, क्योंकि ये कर्मेंद्रियां अंत में बहुत बड़े धोखा देने वाले हैं। स्वराज्य अधिकारी जो बनेगा वही कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चला सकेगा। तो आज चर्चा करेंगे स्वराज्य अधिकारी कैसे बने। स्वराज्य अधिकारी, बाबा कहते स्वराज्य तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम जब से जन्म लिए हो, ब्राह्मण जन्म मिला है तुमको, बर्थराइट के रूप में मैं सौगात रूप में वरदान के रूप में दे देता हूँ। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है स्वराज्य। स्वराज्य अधिकारी बनने बिगैर हम कर्मेंद्रियों का राजा नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सदा स्वमान याद रखो, मैं कौन हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपने भ्रुकुटी तख्त पर बैठ जाओ और राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार को, सबको ऑर्डर पर चलाओ। देखो फिर आपके अधीन में रहेंगे, आप उनके अधीन में नहीं रहेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी हम सभी को वास्तव में बहुत सुंदर इंद्रजीत बनाने के लिए, कर्मेंद्रियों की अधीनता को त्याग कर कर्मातीत बनने के लिए हमें मदद करता है। तो स्वराज्य अधिकारी का नशा ये बेफिक्र बादशाह बना देता है। ये स्वमान जिसको सदा याद है वो बेफिक्र बादशाह बन जाता है, बेगमपुर के बादशाह बन जाता है, बेफरपा बादशाह बन जाता है, बिन कौड़ी बादशाह बन जाता है और बेहद का बादशाह बन जाता है। तो एक बहुत सुंदर स्वमान है, नशा है। तो सदा याद रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रजीत हूँ। स्वराज्य अधिकार बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन का ये जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको तो भूलना ही नहीं चाहिए। और स्वराज्य अधिकारी का नशा कभी भी कम ना हो। स्वराज्य अधिकारी माना ताज, तिलक और तख्तधारी। बाबा जन्मते ही हमको एक सुंदर पवित्रता का ताज देते हैं और जिम्मेवारी का भी ताज पहनाते हैं और स्वमान का तिलक देते हैं जो भविष्य में हमें राज्य तिलक मिलेगा। और बाबा हमें बहुत सुंदर एक अकाल तख्त आत्मा राजा, अकाल तख्त नसीन बना देते हैं बाबा। और भविष्य में भी विश्व राज्य तख्त मिलेगा, अभी बाबा के दिल तख्त नसीन भी हम बन जाते हैं। तो बाबा स्वराज्य अधिकारी बनाकर हमें ताज, तिलक और तख्तधारी बना देते हैं। जो इस स्वमान में वो तख्त में आसीन रहता है, जैसे एक राजा अपने सिंहासन में बैठा रहता है तो अपने सारे कारोबारी को अपने कंट्रोल में रखता है, जो चाहे जैसा चाहे ऑर्डर पर चलाता है। लेकिन जैसे एक जज अपना सीट पर है तो ऑर्डर ऑर्डर करता है तो उसके ऑर्डर सभी मानते हैं, लेकिन अगर एक जज जाके सब्जी मंडी में कहे ऑर्डर ऑर्डर कोई सुनेगा तो अपने तख्त पर बैठना पड़ेगा। इसी प्रकार बाबा कहते हैं अपने आत्मा राजा बनकर, अपने भ्रुकुटी तख्त पर विराजित होकर, उसी स्वमान में अगर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करें तो कर्मेंद्रियां और सारी शक्तियां ऑर्डर न माने ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं स्मृति भूलो ही नहीं कि मैं ताज, तिलक और तख्तधारी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तो जो ऐसे तख्त नसीन होता है ऑटोमेटिकली उसके सारे कर्मेंद्रियाँ उसके अधीन हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी माना धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों के अधिकारी। राज्य सत्ता अथॉरिटी स्वरूप, राज्य सत्ता अर्थात अपने सारे कर्मेंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार को पूरा अर्डर प्रमाण चलाने वाले, जैसा अर्डर करे ऐसा, और जिसमें अटल अखंड अखुट सुख शांति प्रेम आनंद सारे गुणों का खजाना से भरपूर ऐसे राज्य सत्ता धारी, और साथ साथ धर्म सत्ता अर्थ अर्थात धारणामूर्त, विशेष रूप में पवित्रता और सर्वगुणों की धारणा हो जिससे निर्माण बन जाते हैं। राज्य सत्ता अथॉरिटी स्वरूप बनाता है, धर्म सत्ता निर्माण बना देता है। तो जिसके पास दोनों सत्ताएं हैं, सतयुग में धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में होंगी, तो दोनों सत्ता के जो अधिकारी है वही स्वराज्य अधिकारी है। तो अपने सर्व कर्मेंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार को और सारी शक्तियों को, जो अष्ट शक्तियां हैं ईश्वरीय शक्तियां, वो भी ऑर्डर प्रमाण चलने वाले, जब चाहें जिस शक्ति को जहाँ चाहें यूज करें, मन बुद्धि संस्कार पूरा अपने कंट्रोल में हो, ऑर्डर हो। तो वास्तव में जो स्वराज्य अधिकारी होगा अपने मन बुद्धि संस्कार को और सर्व कर्मेंद्रियों को अपने लॉ एंड ऑर्डर पर चलाएगा, तो उसकी अधीनता से स्वतः मुक्त हो जाएगा। तो स्वराज्य अधिकारी माना धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे सारे गुण ज्ञान शक्तियाँ ये तुम्हारे खजाने हैं, तुम्हारे लिए तो हूँ। जो स्वराज्य अधिकारी बनता है उसके सारी शक्तियाँ बाबा से वरदान के रूप में प्राप्त हो जाता है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाता है, और जिससे वो सबको अपने कंट्रोल में चला सकता है। अपने कर्मेंद्रियों को जो अपने कंट्रोल में चलाएगा तो नेचुरली सारे लौकिक अलौकिक मित्र संबंधी सभी उसके सामने भी जी हजूर हाँ जी जरूर करेंगे। तो जो अपने कर्मेंद्रियों का मालिक बनता है, स्वराज्य अधिकारी बनता है, वो सारी दुनिया को चला सकता है, सबको चला सकता है। तो इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करते हैं, सभी विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, मन को जब चाहें जैसा चाहें जहाँ चाहें कंट्रोल कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव कराता है। और स्वराज्य अधिकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, रूहानियत की रॉयल्टी वाले स्वराज्य अधिकारी राजा होता है, इसलिए उसके जीवन में रूहानियत की रॉयल्टी होगी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी होगी। तो इसे कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। बाबा हमें स्वराज्य अधिकारी का सम्मान देते हैं जो इसको बार बार रिफ्रेश करता है बुद्धि में, और इस सम्मान में स्थित होता है ऑटोमेटिकली वो कर्मेंद्रियजित बनता है। लेकिन सिर्फ कर्मेंद्रियाँ नहीं, स्थूल कर्मेंद्रियाँ को कंट्रोल करना फिर भी आसान है, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारे सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ मन बुद्धि संस्कार, उस पर संपूर्ण कंट्रोल होना जरूरी है। उसके लिए तपस्या चाहिए, गहन तपस्या शक्ति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म है, इनको कंट्रोल करना, हाथ को पाँव को आँख को कंट्रोल करना तो सहज है, कर सकता है कोई, सहज नहीं है, इसके लिए भी तपस्या चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है सूक्ष्म की तुलना में सहज है। परंतु मन बुद्धि संस्कार को संपूर्ण नियंत्रण में रखें इसके लिए तपस्या चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाले यही है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले भी यही है। तो हम विस्तार पूर्वक थोड़ा सुनते हैं मन बुद्धि संस्कार क्या है, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे व्यर्थ संकल्प व्यर्थ बोल व्यर्थ कर्म से भी तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा, तो ही तुम कर्मातीत बनोगे। ये तीनों को बिल्कुल अधीन में जब तक नहीं रखोगे, आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, तो ये व्यर्थ से तुम बच ही नहीं सकते हो। तो इसलिए मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण हो जाए, फिर हम चर्चा करेंगे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म से कैसे मुक्त बने। तो ही हम देह की जो कर्मेंद्रियाँ हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियों के अधीनता से हम मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले मन क्या है, दुनिया वाले अगर भक्ति की किताब पढ़ेंगे और कहीं और भी सुनेंगे, बहुत लोगों को वास्तव में कन्फ्यूज कर दिया गया है, लोग मूझे हुए हैं, मन को आत्मा से भिन्न समझते हैं, परंतु मन, बुद्धि, संस्कार कोई आत्मा से भिन्न चीज़ नहीं है, ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। जब हम सोचते हैं, कौन सोचता है, क्या शरीर सोचता है, कौन सोचता है, आत्मा ही तो सोचती है ना, जो चेतना शक्ति आत्मा शरीर के अंदर है वही सोचती है। जब हम सोचते हैं उसको मन कह दिया गया है, जब हम डिसीजन लेते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये अच्छा है, ये बुरा है, निर्णय करते हैं, परखते हैं, उस समय उसको कौन करता है, वो भी तो आत्मा करती है। एक डेड बॉडी डिसाइड कर सकता है, डेड बॉडी निर्णय कर सकता है, नहीं ना। तो आत्मा जब तक अंदर है तो निर्णय शक्ति भी होती है, तो अर्थात आत्मा जब निर्णय करती है, डिसाइड करती है, उस समय उसको हम बुद्धि कह देते हैं, और कर्म करते करते जो आदत बन जाते हैं उसको संस्कार कहा जाता है। तो मन सबसे ये आदि कार्य करता है, मन सबसे मूल है, मन को बीज कह सकते हैं। जैसा मन होगा बुद्धि संस्कार भी उसी अनुसार, मन अगर श्रेष्ठ है तो बुद्धि संस्कार भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो मन वास्तव में मूल है, बीज है, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। जो अपना मन को जीत लिया उस सारे जगत को जीत सकता है, मन फाउंडेशन है। योग का आधार भी हमारा मन है, मन द्वारा ही तो हम बाबा को याद करते हैं, योग लगाते हैं। तो बाबा हमें मन कैसे हमारे बस में रहे वो हमें सिखाते हैं, क्योंकि आज लोग कहते हैं ये मन तो एक बेलगाम घोड़ा की तरह है, इधर भागता है उधर भागता है, मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन नहीं, मन कंट्रोल किया जा सकता है। आप श्रीमद् भगवद गीता अगर देखेंगे, वहाँ भगवान वाच है, जब अर्जुन पूछता है भगवान को, हे प्रभु मेरा मन तो एक बेलगाम घोड़ा की तरह है, इधर भागता है उधर भागता है, कैसे इसको काबू करूँ, असंभव है। तो भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, बेहद का वैराग्य और सतत अभ्यास, वैराग्य वृत्ति से और सतत अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से मन को अपने काबू में रखा जा सकता है। तो बाबा हमें वही सिखाते हैं, ये मन वास्तव में तुमको धोखा देता है। मन ठीक है तो सब ठीक, मन चंगा तो कटौती में गंगा कहा जाता है, मन ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। धन संपत्ति सब होते हुए भी मन ठीक नहीं तो असार लगेगा, बेकार लगेगा। तो इसलिए मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आज लोग कहते हैं बहुत मेहनत है, धन कमाना इतना सहज है क्या, तन का मेहनत, धन का मेहनत, ये सब मन से ही शुरू होता है। मन अगर ठीक है तो सब कुछ आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। इसलिए मन को कैसे ठीक करें, मन वास्तव में एक सूक्ष्म शक्ति है, जो संकल्प करने की शक्ति, उसको मन कहा जाता है। मन में सदा समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प चले, वही बाबा हमें सिखाते हैं। मन में जब उल्टे सुलटे संकल्प चलता है, हम अपने आत्मा की शक्तियाँ ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो इसलिए हम फिर एकदम थक जाते हैं। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प कैसे करें, बाबा हमें सिखाते हैं। अच्छा, बुद्धि क्या चीज़ है, बुद्धि वास्तव में हमारे परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, जो विजुलाइज करते हैं हम योग के टाइम में, तो विजुलाइज करते हैं, बुद्धि का सहयोग से ही होता है। जो दिव्य दृष्टि द्वारा हमें बाबा हमें दिखाते हैं, वो बुद्धि का ही काम है। तो वास्तव में हमारा राजयोग बाबा जो सिखाते हैं उसको बुद्धि योग कहा जाता है। जिसकी बुद्धि ठीक है सब कुछ ठीक है। देखो बहुत एक सुंदर बात है, लोग दुनिया में भगवान को प्रार्थना करके क्या मांगते हैं, क्या एक अच्छा मन दो कहते हैं, नहीं, क्या मांगते हैं, हे प्रभु मुझे एक सद्बुद्धि दो। क्योंकि बुद्धि एक जज की तरह है, बुद्धि अगर ठीक है तो मन में कितने भी कैसा भी संकल्प आए, बुद्धि उसको रोक देता है, ताकि वो फिर कर्म में वो रूपांतरित नहीं होता है। तो व्यर्थ कर्मों से हम बच जाते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि सही सलामत ठीक है तो जीवन भी ठीक हो जाता है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वो जीवन भी बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए भगवान को प्रार्थना करके कहा जाता है, हे प्रभु मुझे एक सद्बुद्धि दो। तो बुद्धि अगर ठीक है, भगवान मनुष्य की बुद्धि आज कैसी हो गई है, पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, म्लेच्छ बुद्धि हो गई। बाबा कहते हैं मैं तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ, दिव्य बुद्धि दे देता हूँ। तो बाबा ब्राह्मण जीवन होते ही हमारी बुद्धि को ठीक कर देते हैं। तो बुद्धि अगर ठीक है तो सब कुछ जीवन में ठीक है, हमारा योग भी ठीक होगा, हम विजुलाइजेशन करेंगे, बाबा से अनुभव कर सकेंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो गया सब। तो इसलिए बुद्धि ठीक रहे। और तीसरी बात है संस्कार। संस्कार हमारे कर्म करने से जो आदत बन जाते हैं, कर्म करने की शक्ति, उसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात हमारी आदतें, जिसके बस होके व्यक्ति कर्म करता रहता है, बसीभूत होके कर्म करते रहते हैं। आज संस्कार ही मनुष्य को सुख देता है, संस्कार ही मनुष्य को दुख देता है। इसलिए आत्मा ही अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है कहा जाता है। जब हम अच्छे संस्कार वाले बनते हैं तो जीवन एकदम सुंदर हो जाता है और सुखदायी बन जाते हैं, सबके प्रिय बन जाते हैं। जिसके संस्कार अच्छे नहीं है, देखना वो किसी को भी प्रिय नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा संस्कार से खुद ही सुखी होते हैं, सबको सुखी करते हैं। बाबा कहते तुम्हारे संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जिसका संस्कार अच्छा है तो वो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकता है। बाबा आए ही तो हैं हमारे संस्कार बदलने के लिए। तो संस्कार, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों आज सभी के भ्रष्ट हो गए हैं, सब पतित हो गए हैं, मलिन हो गए हैं, तमो प्रधान हो गए हैं, जिसको बाबा सुधारने आए हैं। जब तक ये पतित मन को, बुद्धि को, संस्कार को हम त्यागते नहीं हैं और बाबा से एक शुद्ध मन, एक सत्वप्रधान बुद्धि और श्रेष्ठ संस्कार का सौगात नहीं लेते हैं, हम कर्मातीत बनकर इस संसार से उड़ के नहीं जा सकते हैं। इसलिए मन, बुद्धि, संस्कार पर भी संपूर्ण नियंत्रण चाहिए और व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्मों से भी हमें बचना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा, तो ही हम व्यर्थ से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि वैराग्य वृत्ति और ये त्याग वृत्ति, व्यर्थ का त्याग वृत्ति, ये दोनों जब तक नहीं होता है तो ये संसार से हम उपराम हो ही नहीं सकते, उड़ ही नहीं सकते हैं, बाबा के साथ जा ही नहीं सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि हमारे व्यर्थ संकल्प से हम कैसे मुक्त हो जाएं, इसको कैसे त्यागें। बेहद के त्यागी बनने के लिए पहले व्यर्थ संकल्पों का त्याग करना पड़ेगा। व्यर्थ संकल्प वास्तव में आदमी को धोखा देता है। व्यर्थ संकल्प के कारण ही आत्मा कमजोर हो जाती है। व्यर्थ संकल्प आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हम आज वास्तव में जो हम एकदम तमोप्रधान हो गए हैं हमारे ये व्यर्थ संकल्प के कारण। क्योंकि संकल्प मूल है, संकल्प जैसा है उसी अनुसार भाग्य बनता है। हमारे संकल्प श्रेष्ठ है तो हम भाग्य भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। किसी को महात्मा जब कहा जाता है उसका संकल्प ही तो श्रेष्ठ है, महान संकल्प वालों को ही तो महात्मा कहा जाता है। इसलिए संकल्प आज व्यर्थ संकल्प लोगों के तूफान, आंधी तूफान की तरह चलते हैं। नॉर्मली एक व्यक्ति के मन में 40-50 हज़ार सोच चलते हैं, थॉट्स चलते हैं पर डे, एक दिन में। लेकिन जिसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो तो आंधी तूफान की तरह कितने लाखों संकल्प चलते हैं पता नहीं। तो संकल्पों को वास्तव में हम फुल स्टॉप कहें तो स्टॉप हो जाए। जहाँ नहीं सोचना है नहीं सोचना है, जहाँ फुल स्टॉप लगाना है लगाना है। इसलिए जो मास्टर सर्वशक्तिवान होता है और स्टॉप माना स्टॉप करता है। इसलिए बाबा कहते हैं नट लगाओ नहीं तो डट लगाओ। नट और डट, व्हाट नहीं, वांट नहीं, नट और डट। तो जहाँ नहीं सोचना है नहीं सोचना है, नट। और जहाँ बीती सो बीती, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। जो मास्टर सर्वशक्तिवान होगा, स्वराज्य अधिकारी होगा, वही तो व्यर्थ संकल्पों को भी नट और डट लगा सकता है। इसके लिए तपस्या चाहिए, स्वमान का अभ्यास चाहिए। तो व्यर्थ संकल्प आज लोगों के मन में क्या क्या सोच चलता है, इसलिए बाबा कहते हैं वो समर्थ बन ही नहीं सकते। व्यर्थ कभी भी समर्थ बना नहीं सकता है, कभी भी बनने नहीं देगा। इसलिए व्यर्थ को बाबा कहते व्यर्थ से मुक्त बनो, पहले व्यर्थ सोच से मुक्त बनो। व्यर्थ सोच से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं व्यर्थ सोच से मुक्त होने के लिए स्वचिंतन करो, आत्मचिंतन करो और शुभ चिंतन करो, सबके प्रति शुभकामना शुभकाम भावना रखो। तो आज व्यर्थ संकल्प चलता क्यों है? इसका मूल कारण है कि हम सभी देह अभिमान में फंसे हुए हैं। देह अभिमान के कारण ही व्यर्थ संकल्प चलता है। जब आत्म अभिमानी हो जाएं, जो बाबा का संकल्प मेरा संकल्प होना चाहिए, तो जब हम स्वमान में स्थित होते हैं और बाबा को याद करते हैं, जैसा मेरा बाप का संकल्प है ऐसा ही मेरा होना चाहिए, अगर जब स्मृति रहती है, मन मना भव के मंत्र को याद करते हैं, मन को प्रभु में टिकाते हैं, तो व्यर्थ संकल्प चलेगा नहीं। तो आज देह अभिमान होने के कारण ही व्यर्थ संकल्प चलता है। साथ साथ बाबा कहते तुम्हारे ज्ञान चिंतन नहीं चलता है, ज्ञान खजानों की कमी है। बाबा तुम्हें इतने सुंदर शुभ चिंतन श्रेष्ठ संकल्प के लिए तुमको इतने ज्ञान रत्न दिए हैं, तुम ज्ञान रत्न भूल जाते हो। तो ज्ञान का जो मनन चिंतन करेगा, विचार सागर मंथन करेगा, बाबा के महावाक्य को संस्मरण करेगा, तो नेचुरली व्यर्थ संकल्प से वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सदा शुभ भावना रखो, स्वचिंतन करो और श्रेष्ठ स्वमान में रहो। श्रेष्ठ स्वमान में रहो कि मैं कौन हूँ, मैं किसके संतान हूँ, इस संसार में क्यों अवतरित हुआ हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब भूल जाते हैं। और अपने अंदर की कमी कमजोरियों को भी बाबा कहते चेक करो, चेक करो, चेंज करो, अगर चेंज नहीं होते चैलेंज करो। तो जो सदा स्वचिंतन में रहता है, और बाबा कहते इसके लिए रूहानी ड्रिल करना पड़ेगा, बच्चे रोज अपने संकल्पों को दोहराओ, उसको भिन्न भिन्न स्थिति में स्थित होने के लिए ड्रिल करो। जैसे दुनिया में शरीर को दुरुस्त रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ड्रिल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग तो 1, 2, 3, 4 पीटी करते हैं जिसमें शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त हो जाए। बाबा कहते हैं मन को भी दुरुस्त करने के लिए, मन को भी दुरुस्त करने के लिए रूहानी ड्रिल करना पड़ेगा। बाबा कम से कम 25 मुरलियाँ होगी, मैं कह सकता हूँ आपको। बाबा कहते हैं अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ हैं, जिसमें बाबा ने कहा मेरे बच्चे रोज रूहानी ड्रिल करो तो तुम्हारा मन जहाँ चाहो वहाँ एकाग्र हो सकता है। क्योंकि मन वास्तव में अगर अंत में मन इधर उधर अगर भटका हुआ है, मन प्रभु में एकाग्र नहीं है, तो बाबा के साथ जा ही नहीं सकते हैं, अंतमति सोगति हो जाएगी फिर। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बाबा ने कहा रूहानी ड्रिल करो। अभी अभी मैं साकारी ब्राह्मण स्वरूप हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना ब्रह्मा मुख वंशावली, मैं स्वराज्य अधिकारी अकाल तख्त नसीन में आत्मा राजा हूँ। तो इस समान में साकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, समग्र विश्व को बाबा के साथ साथ तपस्यारत होकर शुभ भावना के वाइब्रेशन फैलाओ। 1 मिनट में उड़ जाओ पर सूक्ष्म वतन में, जहाँ स्वयं को एक आकारी स्वरूप फरिश्ता अनुभव करो। एक सुंदर डबल लाइट्स की काया है, मस्तक मणि चमक रही है, मस्तक के चारों ओर एक पवित्रता का सुंदर ताज, ज्ञान और योग रूपी पंखों से सुशोभित, मैं फरिश्ता, एक ही रिश्ता एक ही रास्ता, मैं हूँ फरिश्ता। ये फर्श की दुनिया से ऊपर बिल्कुल उपराम प्रभु संदेश वाहक, मैं आकारी फरिश्ता हूँ। फिर 1 सेकेंड में उड़ जाओ मूल वतन में, परम धाम में, बिल्कुल साकारी आकारी स्वरूप दोनों गायब हो गया, मैं बिल्कुल निराकारी ज्योति हूँ, लाइट और माइट स्वरूप हूँ। बाबा जैसा मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, एक प्रकाश का पुंज हूँ, मैं संपूर्ण मुक्त हूँ, दुनिया के सर्व विकारों से सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। फिर 1 सेकेंड में चले आओ आदिकाल में, मैं संपूर्ण निर्विकारी चतुर्भुज विष्णु हूँ, एक रत्न जड़ी ताज, एक पवित्रता का ताज, डबल ताजधारी, माथे पर विजय का तिलक, गले में वैजयंती माला, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अलंकारी स्वरूप, विश्व का मालिक, संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप। तो साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, ये रूहानी ड्रिल बार बार करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करने का सतत अभ्यास करना पड़ेगा और ये संसार से वैराग्य वृत्ति लाना पड़ेगा, क्योंकि ये मन अंत में धोखा दे सकता है, मन कहीं भी ना जाए, बिल्कुल वैराग्य। ये संसार सभी मरे पड़े हैं, ये कब्रिस्तान बनने वाला है, क्या रखा है दुनिया में। मन को सभी बातों से हटाकर एक अपने सोमान में स्थित होकर प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, आत्मचिंतन, शुभ चिंतन में व्यस्त रहें तो मन सहज ही व्यर्थ बातों से उपराम हो सकता है, मुक्त हो सकता है। अक्सर करके हम जब दूसरों की बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो व्यर्थ संकल्प चलता है। इसलिए बाबा कहते, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। बाबा ने एक महावाक्य में, एक मुरली में कहा है, बाबा का महावाक्य है, दूसरों का अपगुण देखना ये सबसे बड़ा, इसको छोड़ना एक बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि अवगुण देखने से झट वो अवगुण हमारे अंदर संस्कार बन जाते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं। तो अवगुणों का त्याग करना, दूसरों का अवगुण देखना का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। जो इसको छोड़ सकता है वही संपूर्ण बन सकता है। इसलिए हमें दूसरों के अवगुण दिखाई ना दे, अगर देखें तो भी उसके प्रति रहम दिल बने, कल्याणकारी भावना से उसको बदलने की भावना रखें, ना कि उसके प्रति घृणा भाव रखें। तो हम कभी कभी, हमें सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, लेकिन बाबा कहते, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, और परोपकारी बनो, दूसरों के प्रति शुभ संकल्प रखो, तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाओगे। दूसरी बात इम्पोर्टेंट है, हमारी व्यर्थ बोल से मुक्त होना। व्यर्थ बोल वास्तव में बहुत धोखा दे देते हैं। आज रामायण कहो, महाभारत कहो, यह व्यर्थ बोल का ही परिणाम है। व्यर्थ एक यही बोल किसी को तख्त नशीन बना सकता है, यही बोल किसी को जंगल में भेज सकता है, एकदम रसातल में पहुंचा सकता है। कहते हैं, धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकले वाणी, ये दोनों कभी वापस नहीं आते हैं। बाण का जो चोट है, घाव है, वो तो भर जाता है, लेकिन मुख से जो निकलता है वो आजीवन लोग याद करते हैं, भूल नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते, व्यर्थ बोल से भी तुम्हें मुक्त होना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ये भी एक कर्म बंधन बना देता है, कर्म बंधनी आत्मा बनाता है। तो हमें व्यर्थ बोल से बचना है। व्यर्थ बोल किसे कहा जाता है? जो बोल वास्तव में दूसरों को दुख पहुंचाता है, ऐसा बोल हमें त्यागना है, जिसको बाबा कहते हैं कि दुख देने वाले बोल। और लोग ऐसे ही हंसी मजाक के बोल कहते हैं, ऐसे ही मजाक से बोल दिया, लेकिन नहीं, हमारे हंसी मजाक, ब्राह्मण बच्चे दुनिया की तरह हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। हमारे हंसी मजाक में ज्ञानयुक्त हो, योग्ययुक्त हो, रूहानियत हो, तो हंसी मजाक भले करो, बाबा कहते हैं, परंतु दुनिया की तरह हंसी मजाक नहीं। कभी कभी हमारे बोल, व्यर्थ बोल जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, जैसे कई हम कभी कभी क्या कर देते हैं, कहते हैं ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। बाबा कहते हैं ये भी बहुत बड़ा पाप है। बच्चे, तुम्हें ऐसा शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। हमारे बोल, बाबा तो हमें शिक्षा दिए हैं कैसे बोलना है। बाबा कहते हैं जो राजा होते हैं वो बहुत रयाल होते हैं, कम बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। जोर से आवाज़ करके बोलना ये व्यर्थ बोल है। किसी को दुख पहुँचे ऐसे ऐसे अपशब्द मुख से तो हम नहीं निकाल सकते हैं शूद्रों की तरह। बाबा कहते हैं फिर भी साधारण बोल, व्यर्थ बोल भी तुम्हारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें तो कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठे बोलना है। कई लोग कहते हैं मेरा आवाज़ ही ऐसा है। बाबा कहते हैं वो टेप रिकॉर्डर का आवाज़ तुम कम ज़्यादा कर सकते हो, और तुम्हारे अपने बोल को, तुम शब्द को कम धीरे, वो आवाज़ कम नहीं कर सकते हो, इससे तो फिर टेप रिकॉर्डर अच्छा है। तो बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, आवश्यक बोल बोलो, तौल के बोल बोलो, सुखदायी बोल बोलो, प्रेरणादायी बोल बोलो, सबके जीवन में उमंग उत्साह भर जाए, ऐसा बोल बोलो, महावाक्य समान बोल बोलो और वरदानी बोल बोलो, अनमोल बोल बोलो। बाबा कितनी शिक्षा देते हैं, वास्तव में हमारे बोल कैसा होना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं जानते हैं? बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारा ये जो मुख है ये तो एक ऑर्केस्ट्रा है। जैसे ऑर्केस्ट्रा टीम में वहाँ क्या अभ्यास करते हैं, सा रे गा मा पा दा, तो तुम्हारे होठ तो हुइसिल की तरह है, देखो एक बांसुरी की तरह है, होठ से हम हुइसिल बजाते हैं तो बांसुरी की तरह आवाज़ आता है कि नहीं। इसी प्रकार दांत, बाबा कहते तुम्हारे तो ये दांत हारमोनियम के रीड, पियानो के रीड जैसे हैं, सफ़ेद सफ़ेद रीड होते हैं ना, सारे गामा पादा करते हैं। और तुम्हारा तालू तो बाबा कहते तबला जैसा है, हम जैसे जीभ में करते हैं तो तबला जैसा आवाज़ आता है ना नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे मुख एक ऑर्केस्ट्रा टीम है, तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द निकले जैसे बहुत मधुर संगीत सुनते हैं तो लोग गदगद होते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे मुख से ये ऑर्केस्ट्रा टीम से ऐसा शब्द निकले जो सारे गम किसी का पद से निकल जाए। कहते ना सारे गामा पादा नीसा, तो बाबा कहते सारे गम पद से निकल जाए, ऐसा शब्द निकलना चाहिए, किसी का दुख दूर हो जाए, ऐसे महावाक्य शब्द हमारे मुख से निकले, तब व्यर्थ को त्यागें। तीसरा है व्यर्थ कर्म। व्यर्थ कर्म बाबा कहते हैं जैसा कर्म ऐसा भाग्य होता है। आज सभी हम विकर्मी हो गए हैं और विकल्पी हो गए हैं, अभी विकर्माजीत बनना पड़ेगा, हमारे संकल्पों को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं पहले सोचो, फिर समझो, फिर बोलो, फिर करो। तो पहले संकल्प को ठीक करना पड़ेगा, जो विकल्प जीत होगा वही विकर्माजीत हो सकेगा। तो जो विकर्माजीत होगा वही वास्तव में कर्मातीत बनेगा। तो विकर्माजित कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो पाप कर्म बने। जो विकार के अंश के वशीभूत होकर कर्म करते हैं वो विकर्म है, और जो श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं वो वास्तव में सत्कर्म है, सुकर्म है। तो बाबा ने हम सभी को अमृत वेले से लेकर रात्रि तक सारे दिन में हर कर्म कैसे करना है हमें श्रीमत दिए हैं। जो वो श्रीमत को याद करके करता है वो विकल्प विकर्म कभी कर ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं कभी भी ऐसा कर्म मत करो जो नया फिर कर्म बंधनी बन जाओ किसी से। आज भी साकार मुरली आज का अगर आप सुनेंगे, बाबा कहते हैं किसी से लिया है, किसी से दिया है, ये सब बंद करो, अभी सब खाता अकाउंट चुक्त करो, अभी तुम्हें घर चलना है। तो अभी हमें और कोई विकर्म नहीं बनाए। बाबा कहते हैं सदा परमत, पर चिंतन, पर दर्शन, ये तीनों से मुक्त हो जाओ। परमत माना व्यर्थ सुनो ही नहीं, पर चिंतन माना व्यर्थ किसी को सुनाओ नहीं, और पर दर्शन माना दूसरों के व्यर्थ देखो ही नहीं। इसके बदले परमत के बदले श्रीमत पर चलो, पर चिंतन के बदले स्वचिंतन करो, पर दर्शन के बदले स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा कहते पर उपकारी बनो, परमत, पर चिंतन और पर दर्शन के बदले पर उपकारी बनो, दूसरों के प्रति सुभावना शुभकामना रखो, सबके लिए कल्याण के भावना रखो, और जो भी खजाने बाबा से मिले हैं ये सबको सेवा अर्थ लगाओ, तो ही सर्व खजानों को सफल करो, तो ही तुम व्यर्थ से मुक्त होके फिर पुण्य का खाता जमा करके कर्मातीत होके बाबा के साथ जा सकते हो। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इसलिए तपस्या चाहिए, निरंतर सोमान में रहें, बैठ के अभ्यास करें। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, अकाल तख्त नसीन हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ और मुझे अभी विश्व कल्याण करना है। तो श्रेष्ठ सोमान में रहें, ज्ञान का मनन चिंतन करें, तो ही हम ये व्यर्थवादों से मुक्त हो सकते हैं। तो देह अभिमान और देह भान, साथ साथ देह के जो कर्मचारी हैं, बाबा कहते हैं एक कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि संस्कार और व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाओ, तो ही कहेंगे संपूर्ण त्यागी। ठीक है, कल हम चर्चा करते हैं कि हम ये दुनिया में जो व्यक्ति हैं या वस्तु हैं, देह की दुनिया की जो व्यक्ति और वस्तु, इससे कैसे मुक्त बने, इसकी अधीनता से मुक्त बने, इससे ही संबंध कैसे तोड़ें ताकि फिर बाबा के साथ उड़ जाएं। ओके, ओम शांति।